ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। उषा की स्वर्णिम आभा से जिस तरह सारी सृष्टि की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार संपूर्ण विश्व में ज्ञान की आभा से धरा को, कण कण को धर्म और अध्यात्म, विज्ञान की निर्मल धाराओं में छिपे रहस्यों को स्पष्ट करने वाली आदरणीय उषा दीदी जी का हम सभी करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। दक्षिण अफ्रीका के जाम्बिया में धार्मिक परिवार में जन्म ले पूरे विश्व में ज्ञान की उषा फैलाने वाली आदरणीय उषा दीदी जी 1974 में पूरा ही परिवार आपका ज्ञान में आया। ज्ञान और योग में नियमित अभ्यास के बाद 1980 में मानवता के कल्याण के लिए आपने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। 1985 में भारत एकता युवा पदयात्रा बॉम्बे से दिल्ली का श्री कलश भी आपको ही सौंपा था। एसएमएल ट्रेनिंग की शुरुआत भी आपसे ही हुई है। 1992 से लेकर अब तक कई बड़ी संस्थानों जैसे गोदरेज, अमूल, ओएनजी, सेल, इफको आदि में सेल्फ मैनेजमेंट, लीडरशिप, तनाव मुक्ति के शिविर आपने कराए। वर्तमान में आप मुख्यालय शांतिवन परिसर, ज्ञान सरोवर, इन सभी स्थानों की प्रमुख वक्ता है। चीन, जर्मनी, आयरलैंड, यूएसए जैसे देशों में ज्ञान की उषा आपने बिखेरी है। आपने दो किताबें लिखी है, सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप और अध्यात्म की, और जिसका इंग्लिश अनुवाद भी प्राप्त है। उषा दीदी के साथ नाम के साथ जुड़ा है रामायण, श्रीमद् भागवत गीता का आध्यात्मिक रहस्य। 2004 में आप इन दोनों महाग्रंथों का विदेशों में भी रहस्य उद्घाटन किया, जो सभी धर्मों के अनुयायियों ने स्वीकार भी किया कि तर्क संगत और विचारों का कैसे बेजोड़ संगम है, संकलन है। आप टीवी चैनल, यूट्यूब चैनल की आध्यात्मिक प्रखर लोकप्रिय वक्ता है। आपकी ओजस्वी वाणी से परमात्मा ज्ञान को प्रत्यक्ष करके अनेकों अवार्ड से आपको नवाजा गया है, जिसमें मुख्य है हॉल ऑफ फेम अवार्ड, जो कि पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से 2011 में आपको दिया गया है। आप लोगों की उलझनों, समस्याओं और जिज्ञासुओं का स्नेह और मधुरता से निदान करती है और समय अनुसार त्योहारों आदि का भी आध्यात्मिक अर्थ पीस ऑफ माइंड चैनल आदि चैनलों द्वारा स्पष्ट भी करती है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़ियों से आशियाना कैसे बनता है, कहा एक एक तिनका जुटाना पड़ता है, एक एक तिनका जुटाना पड़ता है। तो ऐसी हमारी आदरणीय त्यागी तपस्वी उषा दीदी जी का हम सभी फिर से एक बार करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। आज दीदी जी के क्लास का विषय है तीव्र पुरुषार्थ का आधार, श्रेष्ठ वृत्ति और वाइब्रेशन।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। समय के हिसाब से बाबा के वर्तमान शिक्षाओं को अव्यक्त मधुर महावाक्य में हम सभी ने सुनी है और सुनते ही रहते हैं। विशेषकर बाबा हम बच्चों को समय का इशारा देते हुए अब पुरुषार्थ की रफ्तार को भी तीव्र कैसे करें उसकी विधि भी बताते हैं। मैं ये कहूंगी कि जब बाबा के महावाक्य सुनते हैं, अव्यक्त महावाक्य, तो ये जरूर महसूस होता है कि बाबा अब हम बच्चों को स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने का इशारा देते हैं। काफी समय हम स्थूलता में रहे, अब बाबा कहते हैं सूक्ष्म आधार को भी विकसित करना है, क्योंकि तब हमारे पुरुषार्थ की रफ्तार बहुत तीव्र होगी। और ये सूक्ष्म साधन जो है हमारे भीतर ही है, चाहे वृत्ति कहो, वाइब्रेशंस कहो, अब इसको हमें और मजबूत करना है, शक्तिशाली बनाना है, पावरफुल करना है, क्योंकि तभी ये अंत में हमें बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। और जितना तीव्र गति से हम पुरुषार्थ करना चाहे, ये वाइब्रेशंस और वृत्ति के माध्यम से कर सकते हैं। कोई भी वृत्ति क्रिएट कैसे होती है? वृत्ति बनने का आधार है व्रत। व्रत माने एक सर्कल। वृत्ति शब्द ही निकला है वृत्त से, और वृत्त है एक सर्कल। किस चीज का सर्कल? हमारे अपने ही संकल्पों का सर्कल। कभी कभी कोई कोई संकल्प हम बार बार करते रहते हैं, और जितनी बार उसको करते हैं वैसे वो व्रत अंदर तैयार होते होते वृत्ति बनने लगता है। उदाहरण के तौर पर मान लो किसी को किसी बात का भय है, और भय के कारण वो संकल्प क्रिएट हो रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा, अनेक ऐसे विचार स्वाभाविक रीति से आते हैं। और उस समय हम ये नहीं समझ पाते हैं कि ये संकल्प जितनी बार हम क्रिएट कर रहे हैं वो हमारी वृत्ति वैसे बनाते जा रहे हैं, और उस वृत्ति से वो संकल्प जैसे प्रकंपित होते हैं, अर्थात उसी को वाइब्रेशंस कहा गया है। तो जैसे संकल्प वैसी वृत्ति, और वैसे ही हमारे वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं। अक्सर तो ये वाइब्रेशन हमारे आसपास रहते हैं, जो हमारा प्रभा मंडल का एक हिस्सा बनता है, लेकिन जितना ज्यादा ये फैलने लगता है उतना ही ये वाइब्रेशन दूर दूर तक जाकर के चीज वस्तुओं पर, प्रकृति के ऊपर, अन्य लोगों के ऊपर भी अपना प्रभाव डालता है। इसलिए हमें अभी इतने सावधान होना है। बाबा की पिछली दो मुरलियों में बार बार बाबा ने इस तरफ हमारा ध्यान खिंचवाया कि बच्चे अब अपने संकल्प में व्यर्थ नहीं होना चाहिए, व्यर्थ से स्वयं को मुक्त करो, क्योंकि जितने व्यर्थ संकल्प ज्यादा क्रिएट होते हैं तो वृत्ति हमारी वैसी ही बनने लगती है। व्यर्थ से फिर धीरे धीरे नेगेटिव भी हो जाता है, और कब ये नेगेटिव में चला जाता है पता ही नहीं चलता है। तो जिसको कहा जाए कि हमारे एक ऑरा जो क्रिएट होता है, या हमारे चारों ओर जो एक एनर्जी फील्ड बनता है, ये एनर्जी फील्ड जितना व्यर्थ और नकारात्मक संकल्प होगा उतना वो एनर्जी फील्ड लो होगा, और जितना हमारा संकल्प पावरफुल होगा, शक्तिशाली होगा, उतना ही ये एनर्जी फील्ड भी हमारा बहुत मजबूत बनेगा, श्रेष्ठ होगा, और वो प्रकंपन भी दूर तक फैलेंगे। अब ये ऑरा जैसा व्यक्ति का होता है, वैसी ही घटनाओं को वो आकर्षित करता है। नकारात्मक ऑरा होगा तो नकारात्मक घटनाएं हमारे तरफ ज्यादा आकर्षित होगी। फिर कई बार कई लोग कह भी देते हैं, देखा मैंने कहा था ना ऐसा ही होगा, देखो हुआ ना, किसने किया? हमारी अपनी वृत्ति और वाइब्रेशन ने उसको हमारे तरफ आकर्षित किया, अर्थात हमने द्वार खोल दिया उस चीज को हमारे जीवन में घटित होने के लिए। इसलिए बाबा कहते हैं चारों ओर इतना नकारात्मकता के वाइब्रेशन है तो क्यों हम उन नकारात्मक घटनाओं को आकर्षित करें अपने तरफ। इसीलिए हमें अपना ऑरा बहुत पावरफुल बनाना है, क्योंकि तभी हम अपने आप को योग्य बनाते हैं आने वाले समय के लिए बाबा का साक्षात्कार या बाबा का अनुभव कराने के लिए। हमारे ऑरा द्वारा ही हम अनेक आत्माओं को प्रभु के तरफ, बाबा के तरफ सहजता से आकर्षित कर सकेंगे। तो उसका आधार क्या है? ये वृत्ति और वाइब्रेशन को पावरफुल करने का आधार क्या है? सबसे पहली बात संकल्प। इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे श्रेष्ठ संकल्पों का निर्माण करो, शुद्ध संकल्पों का निर्माण। जितने हमारे संकल्प शुद्ध, स्वच्छ, श्रेष्ठ, सकारात्मक और शक्तिशाली होंगे, ये चार बातें, शुद्ध, श्रेष्ठ, शक्तिशाली और सकारात्मक हमारे संकल्प होंगे, उतनी हमारी वृत्ति भी पावरफुल होने लगेगी, उतने हमारे वाइब्रेशन भी जो हमारे द्वारा प्रकंपित होते हैं वो भी पावरफुल होंगे। क्योंकि जैसे संकल्पों का निर्माण हम करते हैं मन के अंदर, वैसी ही हमारी भावनाएं फैलने लगती हैं। संकल्प से ही तो भावनाएं क्रिएट होती, भावनाओं का भी बहुत गहरा संबंध है। तो ये सब सूक्ष्म चीजें हैं, इसीलिए कहा अब पुरुषार्थ को स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाना है। संकल्प, वृत्ति, वाइब्रेशन, भावनाएं, इसीलिए बाबा हर बार हमें मुरली में ये बात कहते हैं कि बच्चे हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना को प्रवाहित करो। एक नेचुरल प्रवाह है ये, तो उसको प्रवाहित करने के लिए संकल्पों का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। जितना संकल्प हमारा शुद्ध होगा मन स्वच्छ होने लगेगा, और मन स्वच्छ है तो भावनाएं, शुभ भावना, शुभ कामना सहजता से फैला सकेंगे, नहीं तो नहीं फैला सकेंगे। और उसके लिए चाहिए शुद्ध संकल्प और शुभ भावना शुभ कामना के लिए चाहिए ज्ञान का मनन चिंतन। क्योंकि जितना बाबा जैसे हम बच्चों को कहते बच्चे विचार सागर मंथन करो, तो जितना हमारा विचार सागर मंथन चलता है हमारे अंदर वो ज्ञान की ऊर्जा को हम सशक्त करते हैं। ज्ञान पावर है, इसीलिए कहा जाता है दुनिया में भी नॉलेज इज पावर, ज्ञान शक्ति है। तो वो ऐसी ऊर्जा हमारे अंदर तैयार करते हैं। मनन चिंतन करते जाओ, वैसी ऊर्जा हमारे अंदर, हमारे भीतर प्रवाहित होने लगती है, जो फिर प्रवाह भावनाओं के माध्यम से हम चारों ओर फैलाते हैं और हमारे प्रभा मंडल को भी सशक्त करते हैं। तो ज्ञान का खजाना, ज्ञान का विचार सागर मंथन, मनन चिंतन करने की आदत हमें डालनी है। लेकिन ये ज्ञान का विचार सागर मंथन को हो, मनन चिंतन करने के लिए अंतर्मुखता जरूरी है। बिना अंतर्मुखता के तो ये होगा नहीं। जितनी बाह्य मुक्ता होगी उतना तो जैसे वो खाली हो जाता है, वो वाइब्रेशन ही जैसे समाप्त हो जाता है। और बाह्य मुक्ता में फिर व्यर्थ बातें, पहले शुरू में कुछ ज्ञान की बातें अगर करते भी है, लेकिन फिर अधिकतर वो कब व्यर्थ में परिवर्तन हो जाता है पता ही नहीं चलता है। इसीलिए कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। तो शुद्ध संकल्पों का स्टॉक बहुत अधिक होने की आवश्यकता है। और बाबा रोज हम बच्चों को सुबह सुबह कितने ज्ञान अमृत के महावाक्य, एक एक महावाक्य बाबा जैसे कहते हैं, एक एक महावाक्य की वैल्यू लाखों की है। तो इतना अगर वो ज्ञान रत्न हमारे भीतर हम हजम करें, हजम करने के लिए विचार सागर मंथन करना बहुत आवश्यक है। तो शुद्ध संकल्पों का स्टॉक बहुत जरूरी है। दूसरा जो बाबा आने वाले समय के लिए हमें तैयार करने के लिए कहते हैं कि बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए वृत्ति और वाइब्रेशन में बेहद की वैराग्य वृत्ति हो, बेहद की वैराग्य वृत्ति, क्योंकि वही समय को समीप ले आएगा, वही असंभव कार्य को संभव करके प्रत्यक्ष अनुभव कराएगा सबको। यज्ञ के आरंभ में अगर हम देखें तो यज्ञ के आरंभ में जब हम सभी जानते हैं कि बाबा ने 14 साल की बट्टी में दादियों को रखा, तो ये 14 साल बट्टी में क्या किया? बेहद की वैराग्य वृत्ति डेवलप किया। ये दुनिया एकदम पतित है, अशुद्ध है, चारों ओर तमो प्रधानता है, ऐसे ऐसे बाबा ने महावाक्य सुना करके दादियों के अंदर एकदम बेहद की वैराग्य वृत्ति डेवलप की। और वही जैसे जीवन के लिए भी आधार बन गया, नींव बन गई, बहुत पावरफुल फाउंडेशन बन गया यज्ञ का भी। और इसलिए ये बेहद की वैराग्य वृत्ति सबसे पहले तो खुद से ही आरंभ होती है कि हमें अपने अंदर से जो त्याग करना है वो है अहम का त्याग, अभिमान का त्याग, मैंपन का त्याग या स्वार्थ भावना का त्याग। ये त्याग जब होता है तब बेहद की वैराग्य वृत्ति का जन्म होता है। बिना ये त्याग के बेहद की वैराग्य वृत्ति जन्म नहीं लेती है। इसलिए पिछली दो मुरलियों में बाबा ने जब ये बात बहुत अंडरलाइन करा करके, और संडे की मुरलियों में भी बाबा ने इस बात को अंडर, मैं और मेरेपन का भाव समाप्त हो जाए, मैं और मेरापन, जब भी आप कहो मैं तो कोई ना कोई स्वमान को लेकर के मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, ये स्मृति जागृत हो जाए। और जब मेरा कहो तो मेरा बाबा, दूसरा न कोई। तो मैं और मेरे के साथ ये दो चीजों को जोड़ दो तो वो अहम, अभिमान, वो स्वार्थ सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और बेहद की वैराग्य वृत्ति को हम क्रिएट कर सकेंगे, क्योंकि वही तीव्र पुरुषार्थ का आधार है। बिना बेहद की वैराग्य वृत्ति तीव्र पुरुषार्थ आरंभ ही नहीं हो सकता है। और ये दादियों ने प्रैक्टिकल 14 साल एक ही स्थान पर रह करके वो बोर नहीं हुए। आजकल हम थोड़े दिन ही अगर रहते हैं तो बोर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बेहद की वैराग्य वृत्ति का महत्व क्या है इस ब्राह्मण जीवन में, कैसे हमारी भीतर की शक्तियों को वो सशक्त करता है, उसका अंदाजा नहीं है हमें, उसका अनुभव नहीं है। इसलिए थोड़े दिन भी एक स्थान पर रहने के लिए कहा जाए तो सोचेंगे अभी यहां कोई सेवा भी नहीं, यहां कैसे मेरे को गांव में भेज दिया, यहां क्या करेंगे, बोर हो गए हम तो। ये हम भूल जाते हैं कि शायद बाबा ने हमें तपस्या के लिए यहां भेजा है। बेहद की वैराग्य वृत्ति से ही तो रियल तपस्या आरंभ होगी। और बाहर की दुनिया से थोड़े समय के लिए भी हम अगर कट ऑफ हुए और एक समय मिला हमें अपने आप के लिए, ताकि हम अपने आप को भीतर से सशक्त कर लें। ड्रामा हर बात में कल्याणकारी है बाबा कहते हैं, लेकिन जब हम उस ढंग से सोचे तब तो। इसीलिए दादियों को भी अगर 14 साल बाबा ने बाहरी दीवार के बाहर भी नहीं जाने दिया, अंदर ही रह करके ये तपस्या कराते रहे, एक ऐसी बेहद की वैराग्य वृत्ति उनके अंदर जागृत की, जो आज जो इतना बड़ा वट वृक्ष हम देख रहे हैं, ये उसी तपस्या का रिजल्ट है। तो अगर हमें जल्दी जल्दी बाबा की प्रत्यक्षता करनी हो तो हमें भी तो उस विधि को अपनाना होगा। आदि सो अंत, यही कहा जाता है, आदि सो अंत। तो जो आदि में हुआ दादियों ने किया, तो हम सभी भी बाबा के ही बच्चे हैं, तो क्यों ना हम अंत इसी बेहद की वैराग्य वृत्ति के आधार से करें, है ना? और अगर हम उसी आधार से करेंगे तो जरूर बाबा जैसे कहते हैं, जो निमित्त बनता है, निमित्त बनने का भाग्य बहुत ऊंचा होता है। तो कुछ समय हमें अपने आप को देना होगा, कुछ समय हमें अपने आप के साथ एकांत में व्यतीत करना होगा। जनवरी मास का अव्यक्त इशारा जब हम रोज सुनते थे, एकांत एकाग्रता के विषय को लेकर के, और सारी पॉइंट्स एकांत एकाग्रता एक नामी एक रस एक रस स्थिति के बारे में, तो वो स्थिति हमें अपनी बनानी। खाली एक जनवरी मास थोड़ी करना है, लेकिन अभी समय को देखते हुए, समय की तीव्र गति को देखते हुए, अभी हमें अपने अंदर भी वो तीव्रता लाना है, तो जरूर है कि हमें ये बेहद की वैराग्य वृत्ति को विकसित करना ही होगा। अर्थात कुछ समय भी हम अपने आप के लिए निकाले जहां हम अपनी वृत्ति को न्यारा और प्यारा कर दे, डिटैच कर दे बाह्य दुनिया से। दादी जानकी की ये बात मुझे कभी कभी बहुत याद आती है। दादी कहती थी कि सुबह 4 से 8 ये मेरा अपने लिए समय है, 4 से 8 मैं अपने लिए ही व्यतीत करूं ये 4 घंटा। और हमारी आदरणीय मोहिनी दीदी ने 1 साल तक 4 से 8 बजे तक ये 4 घंटा मौन का अभ्यास किया था। कि दिन भर में तो कारोबार होता है तो मौन नहीं रख पाते, 4 घंटा तो हम अपने आप से मौन रखें और मौन रखते हुए अपनी वृत्ति को सशक्त करें। तो कई बार हमने देखा कि उससे कितनी अंदर में पावर, 4 घंटा भी मौन, 7-8 बजे से कारोबार आरंभ होता था फिर भी ब्राह्मणों का, लेकिन वो नहीं बोलते थे 8 बजे के बाद। 4 से 8 मेरा समय अपने लिए ही है, ये और किसी के लिए नहीं है। और उस समय में जितना उसको परवरिश करूं अच्छे विचारों से, श्रेष्ठ संकल्पों से, ज्ञान की बातों से, शक्तिशाली मनोवृत्ति अपनी तैयार करूं, उतना ही हम अपने अंदर देखेंगे कि जैसे एक समृद्धि स्वयं के अंदर अनुभव करें, एक रिचनेस, अपने जीवन की रिचनेस का अनुभव करेंगे। ब्राह्मण जीवन किसको कहा जाता है, उसकी रिचनेस का अनुभव, हम समृद्धि का अनुभव भीतर से करेंगे। तो इसलिए बेहद की वैराग्य वृत्ति बहुत आवश्यक है। तीसरी बात कि वृत्ति को पावरफुल बनाने के लिए, वृत्ति और वाइब्रेशन को पावरफुल बनाने के लिए कोई न कोई व्रत अपनाने की आवश्यकता है। व्रत, जैसे दुनिया में लोग व्रत रखते हैं, शिवरात्रि का महात्यौहार आ रहा है, चारों ओर भक्त लोग भी व्रत रखते हैं। क्यों? क्योंकि जहां संयम नियम होगा वहां खुद में भी शक्ति का अनुभव करेंगे, इसलिए वो कुछ समय के लिए, हद के लिए ही, भले एक दिन या दो दिन, एक हफ्ता के लिए भी एक व्रत लेते हैं। या कई बार कई लोग व्रत लेते हैं कि भाई हर वीक के अंदर हर एक दिन ऐसा निश्चित किया जाए, गुरुवार का दिन या सोमवार का दिन जो शिव का माना जाता है, कि उस दिन हम ये व्रत रखेंगे एक साल के लिए। तो कोई भी संयम नियम आप जीवन के अंदर एडॉप्ट करो, उस व्रत से खुद के अंदर खुद का विल पावर बहुत मजबूत होता है, और वृत्ति को पावरफुल करने के लिए ये विल पावर की बहुत आवश्यकता है। इसलिए व्रत जरूरी है। व्रत माना कोई जिसको कहा जाए कि भाई ये नहीं जिद्दी पना, लेकिन व्रत माना एक स्वयं को हम सशक्त करने के लिए भीतर से एक ऐसा संकल्प बद्ध हो जाते हैं स्वयं के साथ, जो हम बाबा को गिफ्ट देते हैं। बाबा के पास आए, बर्थडे की गिफ्ट तो बनती है ना, बाबा हमें बर्थडे की गिफ्ट देते हैं तो हमको भी तो बाबा को बर्थडे की गिफ्ट कोई तो देनी चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, गिफ्ट में क्या देते, बुराइयों को छोड़ के जाते हैं, बुराइयों को छोड़कर। अरे भगवान को देने के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है हमारे पास। आप किसी बड़ी हस्ती से मिलने जाओ, प्राइम मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट से मिलने जाओ दुनिया में, तो क्या गंदगी उठाकर ले जाएंगे, ये गिफ्ट देने आए हम, अच्छे से अच्छी बढ़िया चीज। तो भगवान सुप्रीम अथॉरिटी से मिलना है, और देने के लिए हमारे पास गिफ्ट क्या है, गंदगी, जो बुराई है वो देने आए हैं। अरे कोई अच्छी चीज नहीं है, बुरी चीज देनी चाहिए। कल संडे की बाबा की मुरली सुनेंगे, बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही है। बाबा ने कहा कि मान लो कि यहां अंधेरा हो और किसी को कहा जाए अंधेरे को भगाओ, भगा सकेगा? भगा सकेगा? अंधेरे को भगाया नहीं जाता है, लेकिन लाइट की स्विच ऑन करो, स्विच ऑन करो, अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है। अंधेरे को भगाने की मेहनत नहीं किया जाता है। अच्छा, पुरुषार्थ किसको कहेंगे, अंधेरे को भगाने को पुरुषार्थ कहेंगे या स्विच ऑन करने को पुरुषार्थ कहेंगे? हाँ, पुरुषार्थ माना क्या है? पुरुषार्थ किसको कहा जाता, अंधेरे को भगाने को पुरुषार्थ कहा जाता या स्विच ऑन करने को पुरुषार्थ कहा जाता है? स्विच ऑन करने को ना, स्विच ऑन कर। अच्छा, सहज कौन सी चीज है, अंधेरे को भगाना सहज है, स्विच ऑन करना सहज है? इसीलिए बाबा कहते मुझे सहज योगी चाहिए, मुझे मेहनत वाले योगी नहीं चाहिए। स्विच ऑन करो ना, इतना ही पुरुषार्थ है। अच्छा, दिया जलाओ, अंधेरा दूर। दिया जब जलता है तो खुशी फैलाता है। हमारा पुरुषार्थ भी ऐसा हो जो खुशी के प्रकंपन फैलाए, न कि अंधेरे को भगाने का पुरुषार्थ लोग कर, ये उल्टा पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसलिए जब अंधेरा भागता नहीं, अंदर की कमी कमजोरी अंधेरा है। ये अंधेरे को बाबा आज हम चिट्ठी लिख देते हैं, बाबा आज से क्रोध छोड़ के जाएंगे, आज से ये बुराई छोड़ के जाएंगे, छूटती है, छूटती है। अंधेरे को मिटाने का प्रयत्न करो, मिटेगा। लेकिन वो अंधेरा क्यों है, कौन सी शक्ति के अभाव के कारण है? तो हमें जो धारण करना है उसका संकल्प लेना, आज से हम ये करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, आज से हम यह करेंगे। क्या करेंगे? वो हर एक अपनी यथाशक्ति खुद से डिसाइड करे। और ये गिफ्ट बाबा को बर्थडे की देनी है कि बाबा आज से हम ये जब करेंगे ना तो खुशी होती है। छोड़ने की बात करके जाते हैं, छूटता है नहीं। यहां से स्टेशन गया, कोई आपकी ट्रेन में सीट पर बैठ गया, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अगर वो बहस कर रहा है तो क्या होगा? तो गुस्सा कहां छूटा, यहां से स्टेशन तक भी नहीं छूटा। और यहां चिट्ठी लिख के जाते हैं, बाबा गुस्सा छोड़ के जाते हैं और फिर दिल खाता है बाबा के सामने चिट्ठी डाली, बाबा को गिफ्ट के रूप में दिया और मैं आज ही फेल हो गया। तो फेल होने के कारण दिल शिकस्त हो जाते हैं, शायद मेरे नसीब में है ही नहीं, मैं कभी करी नहीं। दिल शिकस्त बना जाता है, नर्वसनेस आ जाती है, हिम्मतहीन होने लगते हैं। इसलिए ऐसी पुरुषार्थ की विधि ही न अपनाओ जहां हिम्मतहीन हो जाए, दिल शिकस्त हो जाए। लेकिन हम ऐसी बाबा को गिफ्ट दे, बाबा आज से हम ये रोज करेंगे, और करना शुरू करो तो करने की खुशी होगी, वो हमें बल देता है और करने के लिए जैसे प्रेरित करता है। और वो देखकर बाबा भी कहेगा वाह बच्चे वाह, वाह बच्चे वाह। छोड़ने वाली बात जब नहीं छूटती है तो बाबा वाह बच्चे वाह कहेंगे क्या? कहेंगे ही नहीं। जब छोड़ा ही नहीं, खाली लिख करके गए, बाबा कहे अब ये लिख करके जो हम जाते हैं किसको धोखा दे रहे, खुद को या बाबा को? खुद को धोखा दे रहे हैं, है ना? आज एक बच्चे के हाथ में अगर चाकू आ जाए, आपको मालूम है ये चाकू से खुद को नुकसान करेगा, लेकिन अगर आप चाकू छीन करके निकालने का प्रयत्न करो, वो और कस के पकड़ लेगा, और कस के छोड़ेगा नहीं। हमारा मन भी छोटा बच्चा है, और उसको अगर हमने संकल्प दे दिया आज से गुस्सा छोड़ देंगे, यहां छोड़ के जाते हैं, वो क्या करेगा? और कस के पकड़ लेगा। कैसे छोड़ेगा? देखता हूं कैसे छोड़ता है, और कस के पकड़ लेता है। साइकोलॉजी है, किसी भी इंसान को कोई भी चीज छोड़ने के लिए कहा जाए तो उसको डर लगता है, क्योंकि उसी चीज को उसने आधार बनाया है, कैसे वो छोड़ देगा? और कस के पकड़ लेता है। छोड़ने के नाम से ही तो दुनिया के लोग भी तो डरते हैं, ब्रह्मा कुमारीज में जाएंगे तो ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ने से ही तो डर लगता है। बाबा ने आज तक हमें क्या संकल्प दिया? कभी बाबा ने कहा बच्चे काम विकार छोड़ो? बाबा ने कहा बच्चे पवित्र बनो, पवित्र बनना आसान हो गया। कहां छूट गया काम विकार पता ही नहीं चला, है ना? तो हमें भी जो दुनिया के लोगों को डर है वो डर निकाल, छोड़ना कुछ नहीं है, आप करना शुरू करो। कहां छूट जाना है पता ही नहीं चलता है। आप एक बच्चे को कहा बच्चा तुम यहां खेलो लेकिन ये दरवाजा नहीं खोलना, ये दरवाजा नहीं खोलना, तो क्या करेगा? वो खेलना छोड़ देगा, वहीं जाएगा। साइकोलॉजी है, वो वहीं जाएगा, लेकिन उस दरवाजे के बारे में बताओ ही नहीं, आपको खेलो यहां तो खूब मौज से खेलेगा। हमारा मन भी छोटा बच्चा है, उसको अगर हमने ये संकल्प दे दिया ये छोड़ना पड़ेगा, तो कहा वहां जाना ही नहीं है, छोड़ना पड़ेगा ना, जाना ही नहीं है। हम कभी कभी यही गलती करते हैं, है ना, हम छोड़ देते हैं परिवार के लोग, अरे ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, यहां जाना माने ये छोड़ना पड़ेगा। आप उसको कहो, उसके डर को समाप्त, छोड़ना कुछ नहीं, तुम करना चालू करो, ज्ञान सुनो ना रोज, अपने आप बाबा उसकी बुद्धि का ताला खोल देगा, ज्ञान मुरली सुनते सुनते कहां छूट जाएगा पता ही नहीं चलेगा। बाबा की मुरली में तो ताकत है ना, शक्ति है, वो कैसे छुड़ा देगा पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए लोगों के इस डर को हमें समाप्त करना है, हमारे डर को भी हमें पहले जीतना है। आज से हम बाबा के सामने एक ऐसी बढ़िया गिफ्ट देंगे, बाबा आज से हम ये करेंगे, और करते जाओ, खुशी मिलती जाएगी, बल मिलता जाएगा, करने का श्रेष्ठ कर्म आपका होने लगेगा, फिर देखो कितना सुंदर आपका जीवन, वो चीज कहां छूट गई पता ही नहीं चलेगा। अच्छा अच्छा करने लगो तो व्रत, व्रत लेना है शिवरात्रि पर, बाबा की बर्थडे पर, कोई ना कोई श्रेष्ठ संकल्प का व्रत लेना है। आज से हम ये करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे कोई, कोई को छोड़ना नहीं है, हाँ छोड़ना नहीं है, क्या करना है, बस आज से हम ये करेंगे। कुछ भी अच्छा विचार ले लो करने के लिए, वो तो सहज है ना। वो व्रत लेने से अंदर में आप देखेंगे कि आपका विल पावर बढ़ने लगेगा, और वो विल पावर जैसे बढ़ेगा आपकी वृत्ति अपने आप श्रेष्ठ होने लगेगी, और अगर वृत्ति परिवर्तन हुई तो उसके साथ दृष्टि और कृति, स्मृति सब कुछ बदलने लगेगा। वृत्ति परिवर्तन हुई, वृत्ति एक सीड है जो व्रत से तैयार हुआ है, तो इसीलिए वृत्ति परिवर्तन हुई तो स्मृति, दृष्टि, कृति अपने आप चेंज होने लगेगी, और फिर आप खुद अपने जीवन के अंदर महसूस करेंगे, अरे कितना समय से हम सोच रहे थे ये करने का, लेकिन देखो अपने आप कैसे होने लगा। कहीं ना कहीं अपना ही डर, ये न छूट जाए, वो न छूट जाए, ये न हो जाए, वो न हो जाए, इसीलिए वो हमें आगे करने नहीं देता है। इस डर को समाप्त करो, छोड़ना कुछ नहीं है, करना चालू करो, देखो कैसे होने लगता है, ताकत आने लगती है। बाबा कई बार मुरली के अंदर कहते हैं कि बच्चे, कई बच्चे बाबा के पास आते हैं, बाबा उनको कहते जब तुम नियम धारणा पर नहीं चलते हो यहां क्यों आते हो, तो कहता था बाबा यहां नहीं आऊंगा तो सुधरूंगा कैसे, कहते थे ना। तो साकार बाबा के सामने भी ऐसे बच्चे आते थे, सुधरना चाहते थे, और वो समझते थे ज्ञान मुरली ही वो शक्ति है जो एक न एक दिन पता नहीं कौन सी बात टच होगी, और वो टच होकर के कब हमारा जीवन वहां से परिवर्तन होना आरंभ हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो करना शुरू करो, तो व्रत, व्रत जरूर यहां लेकर के जाना, हाँ कि भाई आज से ये व्रत हम एक साल के लिए, अगली शिवरात्रि तक, ठीक है एक साल के लिए तो कर सकेंगे ना, दुनिया में भी लोग एक साल के लिए व्रत रखते हैं, और वो व्रत रखने से देखो वृत्ति हमारी अपने आप बदलने लगती है, दृष्टि बदली, स्मृति बदली, कृति बदली, तो अपने आप जीवन बदलना ही है, सहज विधि है। इसलिए ये गिफ्ट, बढ़िया से बढ़िया संकल्प करना, तो बाबा हर बच्चे को कहेगा वाह बच्चे वाह, अगर ये कर दिया ना तो देखो क्या हो जाएगा, है ना। और हमारे मुख से भी जब जब करेंगे तो हमारे मुख से भी क्या निकलेगा, वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह वाह का गीत आरंभ हो जाएगा। और इसीलिए बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जब ये वाह वाह का गीत गाएंगे ना तो क्या होगा पता है, तो जो छीछी बातें हैं ना अपने आप कब खत्म हुई पता ही नहीं चलेगा। वाह वाह जिंदगी हो जाएगी, जिंदगी ही वाह वाह हो जाएगी, बस करना आरंभ करो। तो वाह बच्चे वाह, ये शाबाशी लेनी है ना बाबा से। बाबा से लेंगे ना सभी तो एक साल का व्रत लेंगे। अच्छा, चौथी बात, वृत्ति को पावरफुल बनाने के लिए खुद को नॉलेजफुल बनाना बहुत आवश्यक है। नॉलेजफुल बनाओ, क्यों? क्योंकि नॉलेज जो है, ज्ञान जो है, हमें हमारी उलझने भीतर से सुलझाएगा। अगर खुद उलझन में होंगे तो दूसरों की उलझनों को कैसे मिटाएंगे? इसीलिए ज्ञान के माध्यम से हमें अपनी उलझनों को सुलझाना है। ज्ञान हमें सुलझा हुआ बनाता है। जितना खुद सुलझा हुआ होगा उतना अनेकों को सुलझा सकेगा। जो खुद उलझे हुए होंगे वो दूसरे को क्या सुलझाएगा? इसलिए ज्ञान को प्रैक्टिकल स्वरूप में लाना है। एक एक ज्ञान की बात से हमारी अपनी उलझन को हमें समाप्त करना है, और जैसे जैसे वो उलझनें समाप्त हो जाएंगी, खुद भीतर से सुलझे हुए हो जाएंगे, फिर देखो आपकी हर बात लोग सुनना चाहेंगे। एक सुलझा हुआ व्यक्ति हमें बता रहा है, तो सुलझा हुआ व्यक्ति अगर बता रहा है तो जरूर वो बात में कुछ दम तो होगा, तो अपने आप सुनेंगे। जो खुद उलझे हुए होंगे तो लोग कहेंगे पहले तू ही तो ज्ञान को एडॉप्ट करके खुद तो सुलझो। तो इसीलिए हमारा ज्ञान दुनियावी ज्ञान नहीं है, यह आध्यात्मिक ज्ञान को कहा जाता है आध्यात्मिक प्रज्ञा, विजडम। और विजडम व्यक्ति को सुलझा हुआ अपने आप बना देता है। तो इसीलिए जितना ज्ञान का मनन चिंतन करते हुए उसको जैसे अंदर डाइजेस्ट करते जाएंगे, उसकी ताकत को अनुभव करते जाएंगे, अपने आप अंदर से सुलझा हुआ बनने लगेंगे। तो हमारी वृत्ति अपने आप सुंदर श्रेष्ठ बनने लगेगी। जो सर्व के प्रति, बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हें विश्व कल्याण करना है, लेकिन विश्व कल्याणकारी अगर खुद उलझा हुआ होगा तो क्या विश्व कल्याण करेगा? करेगा क्या? कर ही नहीं सकेगा। तो इसीलिए विश्व कल्याणकारी है खुद को सुलझाने के लिए। जब मैच्योर होने लगते हैं, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी जब अपने अंदर में आने लगती है, तो वो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी क्या करती है? दूसरों की बातों को सहजता से क्षमा भाव उसके अंदर स्वतः प्रकट होने लगता है। वो स्वतः सबको क्षमा कर सकता है, और जब दूसरों को क्षमा करने लगेगा, शुभ भावना शुभ कामना प्रवाहित होने लगेगी, तो विश्व कल्याण सहज होगा। दूर दूर तक वो वाइब्रेशन फैलेंगे, क्योंकि भीतर से क्षमा भाव। बाबा कई बार उसके लिए युक्ति हमें बताते हैं कि बच्चे आप पूर्वज हो, कोई आता है कुछ भी उल्टा सीधा करता है, अंदर में क्षमा भाव रखो, बेहद की भावना अपनी बना दो। जब बेहद की भावना होगी, क्षमा भाव अंदर में होगा, किसी के प्रति भी हमारे मन के अंदर उल्टी सुलटी वाइब्रेशन नहीं होंगी, कोई नेगेटिव व्यर्थ ख्यालात नहीं होगा, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है। बाबा कहते हैं उसके प्रति भी शुभ भावना शुभ कामना देना शुरू करो, और जितना उसको आप प्रवाहित करेंगे विश्व कल्याण, माना वो वाइब्रेशन आपका विश्व के कोने तक भी पहुंचेगा। हर आत्मा का सहजता से कल्याण कर सकेंगे हम। विश्व कल्याणकारी स्टेज स्वमान तो लेते, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, लेकिन हमारे आसपास के लोगों को भी हम क्षमा नहीं कर पाते हैं, तो क्या मेरे वाइब्रेशन विश्व तक पहुंचेंगे? पहुंच ही नहीं सकते हैं। विश्व कल्याणकारी हम बन ही नहीं सकते। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए पहले मुझे अपने आसपास के जो लोग हैं उसके प्रति तो हमारे वाइब्रेशन ठीक करने होंगे। अर्थात जैसे दुनिया के अंदर भी लोग कहते हैं कि क्षमा कर दो, बड़ी दिल रखो, बाबा भी हम बच्चों को कहते बड़ी दिल रखो, हमारी दादियों ने कभी किसी के प्रति ये वाइब्रेशन नहीं रखा, मुझे इसको माफ नहीं करना, इसको माफ नहीं, सबको माफ करते चलो, सबकी बातों को क्षमा कर दो, आपका दिल भी हल्का रहेगा, आपका माथा भी हल्का रहेगा, और आप हरेक के साथ जो व्यवहार करेंगे वो व्यवहार भी बहुत सुंदर श्रेष्ठ होगा, और तब आपके वाइब्रेशंस दूर दूर तक फैलेंगे, दूर बैठी आत्माएं भी वो साक्षात्कार कर सकेंगे। तो ये स्पिरिचुअल मैच्योरिटी हमें बनानी है, क्योंकि हम पूर्वज हैं। तो पूर्वज पना अपना विकसित करना है, और जितना उसको विकसित करेंगे उतना हमारी वृत्ति द्वारा वो वाइब्रेशंस दूर दूर तक पहुंचेंगे और विश्व सेवा सहज होने लगेगी। तो यही विधि है कि वृत्ति वाइब्रेशंस के द्वारा हम आगे बढ़ने महसूस करेंगे कि खुद आगे बढ़ते जा रहे हैं, और जितना आगे बढ़ते जाएंगे हमारा तीव्र पुरुषार्थ अपने आप होने लगेगा। इसलिए बाबा ने जो कहा कि बच्चे पुरुषार्थ के आगे तीव्र शब्द लगाओ, कैसे लगाना है, भावनाएं वृत्ति सब बेहद में ले जाओ, जितनी बेहद में होगी उतना खुद का भी कल्याण होगा, खुद की स्पीड भी बढ़ेगी और दूसरों को भी हम सहज सेवा कर पाएंगे। भीतर से सुलझ जाओ, सुलझा हुआ बनो, अभी उलझन हमारे जीवन में नहीं रहनी चाहिए। इतना समय से हम ज्ञान सुन रहे हैं तो कम से कम वो ज्ञान प्रैक्टिकल जीवन में आए और हमारी उलझनों को समाप्त करें। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।
मन में है तन में है यही उमंग,
बदलेंगे जग के इस जीवन के रंग,
हम है राही रुकते नहीं,
इतना है दम थकते नहीं,
खुमार दिल में हम प्रभु के संग, मन में है तन में है यही उमंग, बदलेंगे जग के इस जीवन के रंग। अंतर ज्योति जगाएंगे सबकी,
चंदन सा महके हर एक मन, करके तपस्या बने पावन,
चंदन सा महके हर एक मन, करके तपस्या बने पावन,
पुलकित धरा पुलकित गगन, लहराती सुखदाई पवन,
पुलकित धरा पुलकित गगन, लहराती सुखदाई पवन,
है एतबार जो प्रभु को पसंद।
तकदीर हमारी प्रभु ने बनाई, स्नेह शक्ति से हमें दी राजाई।
तकदीर हमारी प्रभु ने बनाई, स्नेह शक्ति से हमें दी राजाई।
भाग्य हमारा ऐसा मिला, मन के चमन ये खिला खिला।
भाग्य हमारा ऐसा मिला, मन के चमन ये खिला खिला।
प्रभु से मिली मन की मंजिल,
कहता यही हमारा दिल।
आई बहारें ये लेके तरंग, मन में है तन में है यही उमंग। बदलेंगे जग के इस जीवन के रंग, हम है राही रुकते नहीं। इतना है दम थकते नहीं, खुमार दिल में हम प्रभु के संग। मन में है तन में है।